सहगना ಪ್ರತಿತಾಂತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಂ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೇ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಕಂದ ದೂಸರ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 23
ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖ ಕಲಯ ಕಲೇಶ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಚೇ ಅವತೀರ್ಯ ಗುರೋ ನಿದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವನಂ ಸದೈತ ಅನುಜ ಆವಿವೇಶ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಂಧರ ಆತಿಂ ಆರ್ಚಕ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖ ಕಲಯ ಕಲೇಶ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ ಅವತೀರ್ಯ ಗುರೋ ನಿರ್ದೇಶೇ ಗುರೋ ನಿರ್ದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವನಂ ಸದೈತಾನುಜ ಆವಿವೇಶ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಂಧರ ಆತಿಮಾರ್ಚ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖ ಕಲಯ ಕಲೇಶ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ ಅವತೀರ್ಯ ಗುರೋ ನಿರ್ದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವನಂ ಸದೈತಾನುಜ ಆವಿವೇಶ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಂಧರ ಆರ್ತಿಮಾರ್ಚ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖ ಕಲಯ ಕಲೇಶ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ ಅವತೀರ್ಯ ಗುರೋ ನಿದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವನಂ ಸದೈತಾನುಜ ಆವಿವೇಶ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಂಧರ ಆರ್ತಿಮಾರ್ಚ
मुख कलया कलेश
अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेशे
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेशे
तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविशेष
तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविशेष
अस्मिन् विरुध्य दशकन्दर आदिमा च
अस्मिन् विरुध्य दशकन्दर आदिमा च अस्मा प्रसाद सुमुखा कलया कलेश
विश्वाकुवंश अतिवीर्य गुरो निदेश
विश्वाकुवंश अतिवीर्य गुरो निदेश
तिष्ठन् वनं सदयिता तनुज अभिवेश
तिष्ठन् वनं सदयिता तनुज अभिवेश
अस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर अतिमाच्छ
अस्मिन् विरुद्ध अस्मा प्रसाद सुमुख कलया कलेश विश्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेश तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश
इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे वंशे कुल में अवतीर्य जन्म लेकर गुरु हो पिता अथवा गुरु की निदेश आज्ञा से तिष्ठन् स्थित होकर वनम वन में सदयिता अनुजह अपनी पत्नी तथा अनुज सहित आविवेश प्रवेश किया यस्मिन् जिसको विरुद्ध विरोध करके दशकंधरह दस सिरों वाले रावण ने आतिम महान कष्ट आचर प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी कृपा के कारण श्री भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तात्पर्य, भगवान राम श्री भगवान हैं और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वअंश थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो भगवान के ही अंश हैं। लक्ष्मी जी सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। वे न तो सामान्य स्त्री हैं और ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति का अवतार हैं। दुर्गा जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया जा रहा था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य में 14 वर्ष तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत परम शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है। वे समस्त जीवों द्वारा, यहाँ तक कि अपने पति रामचंद्र जी के द्वारा भी पूजनीय हैं। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आवाहन करता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण या शोषण ये रावण की नीति है। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहां तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। क्योंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात ऐश्वर्यों के स्वामी कहा गया है। रामं रामानुजं
सीतां
भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री राम को, उनके अनुज श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को, साथ ही साथ उनके परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही पावन पर्व है वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। ये बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि जब भगवान श्री राम इनका प्राकट्य हुआ आज से लाखों वर्ष पूर्व, उस दिवस की स्मृति में आज इस दिवस पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं, उनसे याचना कर रहे हैं कि वे हमें अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपने चरण कमल प्रदान करें। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग वाल्मीकि रामायण से चर्चा कर रहे हैं। रामायण, जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे कि यहाँ केवल 24,000 श्लोकों की है, लेकिन जब इसका गुणगान ऊंचे लोकों में होता है तो इसको कई कई हजारों लाखों श्लोकों में गाया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भगवान का गुणगान हो चुका है फिर से उसको गाया जाए और बढ़ाया जाए? इसे परंपरा कहते हैं। जब नारद मुनि से सुना तो 24,000 श्लोक नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि ने उसको बढ़ा दिया। फिर वाल्मीकि से जब अन्य लोग सुनते हैं फिर अपने साक्षात्कार के साथ उसको और बढ़ा देते हैं, इसलिए वो और रसदार हो जाता है। तो ऐसे ही रामायण अलग अलग स्थानों में इसका गुणगान होता है, अलग अलग सभ्यताएं सारे जगत में आज भी रामायण की कथा का गुणगान करते हैं। वहां पर नाम थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन है वही कथा, है वही भगवान श्री राम, जिनका वर्णन प्रभुपाद ने तात्पर्य में किया। पूर्ण भगवान है, शर ऐश्वर्य पूर्ण है, और ऐसे भगवान श्री राम का हम गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी ने कल हम लोगों ने देखा कि लंका को जला दिया और फिर वापस कूद गए महेंद्र पर्वत की ओर। जो मूर्ख होते हैं, अभक्त होते हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं करते, ऐसी कथाओं को दंत कथा मानते हैं। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सारे समुद्र को एक छलांग में लांग जाए, इसलिए इन कथाओं को काल्पनिक मानते हैं। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हम लोग अपने अनुभव में ऐसी कोई चीज देखते नहीं है। अगर समुद्र को पूरा लांघना है और एक व्यक्ति केवल छलांग लगाता है, एक छलांग में राम और रा और म पूरा करने से पहले, म बोलने से पहले पहुंच जाता है, तो ये संभव नहीं है। तो आजकल भौतिकवादी वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा संभव हो सकता है। विज्ञान में एक ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी, जिसमें अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को पढ़ा जाता है, उसके अध्ययन किया जाता है, और वो बतलाते हैं कि चंद्रमा एक ऐसा स्थान है जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण यह बहुत अलग है, पृथ्वी से अलग है, और उस कारण से वहां पर बड़ी आसानी से बड़े बड़े पत्थरों को उठाया जा सकता है, चाहे कितने ही बड़ा पर्वत क्यों ना हो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। या फिर अगर छलांग लगानी है तो कितनी भी लंबी छलांग लगा सकते हैं। अगर हम लोग उनके बताए हुए तथ्य को विश्लेषण करें तो यही आता है कि जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो एक व्यक्ति अगर छलांग लगाता है तो एक समुद्र के 7 समुद्र पार कर सकता है, एक छोटे छोटे पर्वत के बड़े बड़े पर्वतों को उठा सकता है। तो इससे हमें जानना चाहिए कि जो भगवान श्री राम, जो कृष्ण इन सारी शक्तियों को प्रकट करते हैं, इन सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, अन्य ग्रहों को प्रकट करते हैं, ऐसे स्थानों को प्रकट करते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, या फिर वो भगवान जो सारी शक्तियों के स्रोत हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण भी आता है, तो क्या उनकी इच्छा से ये शक्ति जो जीव को पकड़े रखती है, उड़ने नहीं देती है, क्या उनकी सेवा के लिए उनकी इच्छा से वो कम नहीं हो सकती? बड़ा सरल है समझने के लिए, लेकिन आज के जगत में हम सब की सबसे बड़ी बीमारी है कि हम लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। ये हम सब के लिए सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारा विश्वास नहीं है शास्त्रों पर। हम ऐसे लोगों के किताबों पर विश्वास करते हैं जो अपने मन से, किसी कल्पना से कुछ चीजों को लिखते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, मेरे विचार से ऐसा है, उन किताबों को हम लोग सर पर धारण करते हैं, विज्ञान। लेकिन जहां शास्त्रों में कहीं कोई कल्पना नहीं है, केवल तथ्य है, सत्य है, जब वो हमारे सामने आता है तो हम लोग उस पर प्रश्न करते हैं, ये कैसे संभव है? एक दृष्टि से ये ठीक भी है, क्योंकि शास्त्र ये अपरोक्ष ज्ञान है, ये कोई हमारे बुद्धि में, हमारे इंद्रियों में आने वाला ज्ञान नहीं, उनसे परे है। और इसी कारण से जो चीज हम समझ नहीं पाते हैं उसको नकार देते हैं। कई बार हम ये उदाहरण देते हैं कि एक छोटा सा बालक पहले या दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसको आप कहिए कि ये पांच हैं, इसमें से तीन निकालिए, तो बालक बड़ी आसानी से निकाल देगा, एक दो तीन, कितना बचा, दो। बहुत प्रसन्न होगा बालक कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। उसी बालक को आप कहिए कि ये पांच है, इसमें से सात निकालिए, तो बालक कहेगा एक दो तीन चार पांच, या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूं, क्योंकि जब केवल पांच है उसमें से सात कैसे निकल सकता है, असंभव, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, चौथी पांचवी कक्षा में जाता है, छठी कक्षा में जाता है, और फिर आप उसको यही प्रश्न पूछिए कि पांच में से सात निकालो कितना रहा, बड़ी आसानी से बोल देता है -2। तब वो ये नहीं कहता कि क्या पागलपनी की बात कर रहे हो आप, पांच में से सात को नहीं निकाला जाता। इसी तरह ये भक्ति का ज्ञान है, शुरुआत की अवस्था वो बच्चे की अवस्था है, जो केवल ये जानता है कि पांच में से तीन निकलता है, बस जो हम देखते हैं वही है हमारे सामने, अगर हम नहीं उड़ सकते तो कोई भी नहीं उड़ सकता, अगर हम पर्वत नहीं उठा सकते तो कोई भी नहीं उठा सकता, आत्मवत मन्यते जगत। लेकिन जब वही बालक भक्ति का ज्ञान लेकर थोड़ा सा बड़ा होता है, भक्ति में उसको ज्ञान आ जाता है, तो फिर वही बालक इस बात को बड़ी आसानी से समझ जाता है, शास्त्रों के ज्ञान को, शास्त्रों की भाषा को, शास्त्रों के सार को समझता है, जब एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेता है। इसी चीज को श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि लोग अलग अलग धारणाएं देते हैं, अलग अलग टीका करते हैं रामायण के ऊपर, और कहते हैं कि बाकी जो उनके भाई थे वो साधारण जीव थे इत्यादि। लेकिन भागवत बतलाता है कि वे सब भगवान के अंश हैं और श्री राम ये पूर्ण अंश हैं, इसीलिए षट ऐश्वर्य पूर्ण है, ऐसा श्री प्रभुपाद हम लोगों को समझाते हैं। और ये मार्ग है भगवान को समझने का। भगवद गीता में भगवान ने तो कह दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन, कि बस तुम इतना जान लो कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दिव्य है। केवल इतना जान लेने से त्यक्त्वा देहं, जब आप देह को छोड़ोगे पुनर्जन्म, फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन क्या ये जानना बड़ा सरल है? कहना सरल है, भगवान का जन्म भगवान के कर्म ये दिव्य है। लेकिन भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसे नहीं तत्वतः, उसको तत्व की दृष्टि से समझो, उसको जानो कि क्यों कर्म दिव्य है, क्यों उनका जन्म दिव्य है, उनकी स्थिति दिव्य है, तब फिर हम लोग त्यक्त्वा देहं, फिर देह को छोड़कर फिर पुनर्जन्म नहीं लेते, फिर हम भगवान के पास जाते हैं। तो रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये दिव्य ग्रंथ हैं। इसलिए हमें इस रोग से परे जाना है कि हम शास्त्रों पर विश्वास करें और उसके द्वारा अपने जीवन को सफल करें। तो हनुमान जी ने छलांग लगाई, फिर से वापस महेंद्र पर्वत पर आए। सारे जो वानर थे बड़े उत्साहित थे, जामवन ने देखा दूर से और जान गए कि हनुमान जी सीता से मिलकर आ रहे हैं, सफल हुए हैं। इसीलिए उनकी जो हुंकार है, वो जो गर्जना कर रहे हैं, उसमें एक हर्ष है, आनंद है। और फिर जब हनुमान जी आए, सारे वानर उनके पास भागने लगे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए फिर से उन सबको देखकर, और जामवन ने उनसे कहा कि हनुमान जी अब विस्तार से बताइए क्या हुआ, आप कैसे गए और वहां क्या क्या हुआ, कैसी लंका नगरी है रावण की, और क्या सीता देवी हैं, और हैं तो वो कैसी हैं, ठीक हैं? तो फिर उस समय हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बतलाया। हनुमान जी ने बतलाया कि कैसे मैं यहां से कूदा, फिर कैसे मैनक पर्वत आया, और जैसे जैसे हनुमान जी बताते जा रहे थे, सारे जो राक्षस थे उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। हनुमान जी ने बताया कि सुरसा आई और फिर उसने मुंह बहुत बड़ा कर दिया, छोटा सा हो गया, उसके मुंह में जाकर बाहर आया और इस तरह से मैंने उसको पराजित किया। सारे वानर जी कहने लगे जय हो जय हो जय श्री राम। फिर आगे बताने लगे सिंहिका का वर्ण, कैसे उसका वध किया। अब एक बात हमें जाननी चाहिए कि वर्णन सुनकर लग सकता है कि अभी कल ही हम वर्णन कर रहे थे कि हनुमान जी अपने को श्रेय लेना नहीं चाहते थे, हनुमान जी चाहते थे श्रेय दूसरों को मिले। लेकिन जो व्यक्ति खुद श्रेय नहीं चाहता है, क्यों इतने विस्तार से सारा वर्णन कर रहा है, क्यों कह रहा है कि कैसे सिंहिका को मारा, कैसे सुरसा को पराजित किया? दरअसल हनुमान जी का एक उद्देश्य था। हनुमान जी जानते थे कि अब युद्ध होना है, और युद्ध में अगर मैं वर्णन अभी करूंगा रावण की नगरी का, रावण की शक्ति का, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको सुनकर ये जो वानर हैं ये निरुत्साही हो जाए कि हनुमान जी आप तो कूद गए, हम नहीं कूद सकते हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। तो उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने ये तपस्या की। हनुमान जी के लिए तपस्या थी अपना ही गुणगान करना कि मैंने उसका वध किया, मैं वहां गया और इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये तपस्या उन्होंने सहन की केवल इसलिए कि सारे वानरों को उत्साह आ जाए। और ऐसे ही वानरों को उत्साह आ रहा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर आगे बताया हनुमान जी, फिर लंकिनी मिली, फिर लंकिनी को परास्त किया, बहुत अच्छा जय जय श्री राम। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि मैं घूमा, सारी नगरी में घूमा, मैंने देखा, और फिर अशोक वाटिका में सीता को मिला, और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने सीता को देखा, सारे वानर उछल पड़े हर्षोल्लास से भगवान श्री राम का नाम लेने लगे। और फिर उस समय हनुमान जी ने आगे वर्णन किया कि फिर मैंने सारी अशोक वाटिका को विध्वंस किया, बहुत सारे राक्षस आए, बड़े बड़े राक्षस आए, मैंने उनका वध कर दिया और जोश आ गया वानरों को। उसके बाद हनुमान जी ने कहा, फिर मैंने रावण को देखा, मैं पकड़ा गया और रावण के सामने गया और रावण को मैंने समझाया कि रावण वापस कर दो सीता को, शरण लो श्री राम की, नहीं तो श्री राम तुम्हारे जैसे असुर को मारेंगे। मैंने उनको बताया कि भगवान के आने के दो कारण हैं, पहला देवताओं की रक्षा करना और दूसरा तुम्हारे जैसे असुर को मारना, इसलिए अभी भी समय है, शरण में आओ। लेकिन रावण ने सुना नहीं, वो क्रोध में आ गया और उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी और अग्नि बहुत तेज थी, लेकिन मैं घबराया नहीं और उत्साह है, ये उत्साह दिला रहे थे हनुमान जी। और फिर मैंने सारी लंका को जला दिया, एक घर से दूसरे घर तीसरे घर सारी लंका जला दी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि कहीं सीता तो नहीं जल गई। फिर मैं गया और मैंने देखा कि सीता सुरक्षित थी, वो जल नहीं सकती क्योंकि वो श्री राम की संगिनी है। तो जब ये वर्णन सुना सारे वानरों ने, वो इतने उत्साही हो गए। अंगद बोलने लगा, अंगद ने कहा कि हनुमान जी ने जो कार्य किया है ये बहुत ही महान कार्य है, लेकिन हमारी सेना भी कम नहीं है, हमारे वानर भी कम नहीं है। हमारी सेना में दो ऐसे वानर हैं जिनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उनको कोई मार नहीं सकता, और ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो वानर प्रकट हुए थे श्री राम की सेवा के लिए, उस समय जब श्री राम आए थे तो ये सारे देवताओं के अंश थे, कोई सूर्य पुत्र, कोई इंद्र पुत्र, कोई वायु पुत्र, ऐसे सारे देवताओं के अंश आए थे, क्योंकि सभी देवता चाहते हैं कि वो भी भगवान की लीला में भाग लें। वो अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानते हैं जब वो देखते हैं कि पृथ्वी पर एक साधारण लोग, जिनको देवता अपनी दृष्टि से साधारण समझते हैं, मनुष्य, लेकिन इतना भाग्यवान कि भगवान की लीलाओं को देखता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है। देवता इस बात को समझ नहीं पाते कि कैसे भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं। जब लोग जाते हैं, जैसे ऋतु महाराज और महारानी अर्ची वो जा रहे थे, तो जब वो भगवत धाम जा रहे थे तो उनको देखकर सारे देवता सारी देवियां शोक करने लगी, कहने लगी कि हाय हमारे ये देवता होने पर धिक्कार है, क्या लाभ है। देखो वो मनुष्य था, उस ऋतु महाराज मनुष्य तो नहीं थे, लेकिन मनुष्य की भूमिका में भगवान के अवतार हैं, तो बता रहे थे कि देखो वो मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाला कितना भाग्य है उसका कि आज वो भगवान के धाम जा रहे हैं और हम यहां स्वर्ग में केवल भोगों में लगे हुए हैं। ये देवताओं का शोक है और ये सत्य है। देवता ये शोक करते हैं कि हाय इस कलयुग में क्यों नहीं हमारा जन्म हुआ इस भारत भूमि पर। अब से शोक कर रहे होंगे ऊपर बैठे हुए कि हम यहां पर भोग कर रहे हैं नंदन कानन मन में, और वहां देखो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बड़ी आसानी से भगवत धाम की तैयारी कर रहे हैं। ये शोक होगा ऊपर देवताओं को। और फिर आगे आने वाले 10,000 वर्षों में वे जन्म लेंगे केवल एक कारण के लिए, श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक सदस्य बन सके, 16 माला जप कर सके, 4 नियमों का पालन कर सके और फिर इसके द्वारा भगवान के धाम जा सके। और ये सत्य है, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की ये शक्ति है कि वे धाम को प्रकट कराते हैं। हनुमान जी की शक्ति थी, उन्होंने सीता देवी को प्रकट कराया। जय श्री राधा गोकुला। सीता देवी को ढूंढना, उनको सबके समक्ष प्रकट कराना, और जब हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन को उन्होंने सारे जगत में प्रकट कराया, कौन जानता था वृंदावन अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, यूरोप में, रशिया में, पाकिस्तान में, वैसे वो जानते थे पाकिस्तान वाले क्योंकि भारतीय थे लेकिन भूल चुके थे, लेकिन आज हर स्थान में इस वृंदावन को श्रील प्रभुपाद ने प्रकट कराया। और केवल यही नहीं, भक्तों की यह भी शक्ति है कि उसी वृंदावन को वो हमारे हृदय में भी प्रकट करा सकते हैं अगर हम उनकी शरण जाते हैं। तो हनुमान जी ने सीता देवी को इसीलिए प्रकट करवाया। सीता देवी छुपा दिया गया था, सीता देवी को रावण जो भौतिकता का, भौतिकवादियों का प्रमुख सूचक है, उसने सीता को छुपा दिया था। अर्थात जब भौतिकवाद बढ़ जाता है, भौतिकता बढ़ जाती है, तो आध्यात्मिकता को छुपा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ आज के समाज में, और इसीलिए भक्तों को आना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद आए ताकि वो सीता, वो आध्यात्मिकता, वो सत्य, वो भक्ति पुनः प्रकट हो सके, और श्रील प्रभुपाद ने उसको प्रकट कराया। तो हनुमान जी ने जब वर्णन किया तो हम वर्णन करने लगे कि हमारे भी सेना में इस समय दो ऐसे वानर हैं जिनको ब्रह्मा जी का वरदान है, अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, और वे मरेंगे नहीं, उनको कोई मार नहीं सकता। और मैं स्वयं, अंगद कहने लगा, मैं स्वयं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं अकेले ही रावण का वध कर सकता हूं और सारी लंका को समाप्त कर सकता हूं। तो उसने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, हमें अभी वापस किष्किंधा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों किष्किंधा जाएं, उतने सारे जो वानर वहां पर इकट्ठा हैं उनको क्यों कष्ट में डालें, क्यों श्री राम और लक्ष्मण को कष्ट में डालें, अभी हम पुनः वापस जाएंगे लंका, मैं खुद आगे आगे रहूंगा और हम अभी लंका जाएंगे, रावण का वध करेंगे और सीता को लेकर आएंगे। इतना उत्साह अंदर में, कहा अकेले ही, मैं खुद अकेले कर लूंगा। और वैसे शक्ति थी, ऐसा नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं थी। तो सारे वानर वो बड़े उत्साहित थे, सब तैयार हो गए, हाँ अंगद ये ठीक है, आप आगे चलो, हम आपके साथ में हैं। और अंगद भी तैयार हो गए कि चलो अभी जाना है, बस रावण पर आक्रमण करना है, नगरी को विध्वंस करना है और सीता देवी को लेकर आना है। और अंगद ने कहा कि हम ऐसे कैसे जाएं केवल समाचार लेकर कि सीता देवी मिल गई है, अरे हम सीता को लेकर जाएंगे तो सोचो श्री राम कितने प्रसन्न होंगे। अभी अगर हम गए और हमने सूचना दी तो हो सकता है राम दुखी हो जाए कि सीता ऐसी अवस्था में है जैसे हनुमान जी ने वर्णन किया था, तो क्यों श्री राम को दुख देना है, क्यों कष्ट देना है, चलो अभी सीता को लेकर आते हैं। तो सारे तैयार हो गए, सब उत्साही। तो उसमें जामवंत, वो सब जानते थे, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार इस लीला को देखा था। जामवंत ये बड़े ही वृद्ध व्यक्ति हैं और इस सृष्टि की शुरुआत से यहां पर हैं। जब कोई नहीं था, कोई जीव नहीं था, कोई योनि प्रकट नहीं हुई थी, ये सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी अचंभित रह गए, ये क्या प्राणी है, सारे शरीर पे काले काले बाल, ये क्या है। और उस समय भगवान आनंद ले रहे थे दो असुरों को मारने का। भगवान का एक नाम है मधु कैतब हारी, मधु और कैतब इन दोनों का वध किया था। तो भगवान जब ये लीला कर रहे थे, केवल अकेला एक दर्शक था और वो था जामवंत। भगवान लड़ रहे थे मधु और कैतब से और जामवंत तालियां बजा बजा के भगवान को बहुत उत्साह दिला रहे थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी कभी मधु कैतब को भी उत्साह दिलाते थे और मारो इधर से, ताकि भगवान जोश में आ जाए और फिर से युद्ध करें। और उन्होंने अपने समय में कई बार श्री राम के अवतार को देखा। तो इस इसलिए वो जानते थे कि क्या होने वाला है। ये अंगद जाकर युद्ध नहीं करेगा, युद्ध करने के लिए तो श्री राम आएंगे। तो इसीलिए उसने अंगद को समझाया। जांबवंत ने कहा कि देखो अंगद, हमें क्या आदेश मिला? हमें आदेश मिला कि सीता को ढूंढना है। क्या हमें ये आदेश मिला था कि सीता को लेकर आना है? अंगद ने कहा नहीं। तो फिर हमें केवल आदेश का पालन करना चाहिए। और क्या तुम भूल गए हो कि श्री राम ने सभी वानरों के सामने एक वचन लिया था? उन्होंने कहा था कि मैं सीता को वापस लेकर आऊंगा, जहां कहीं भी सीता हो। तो ये वापस लाने का काम श्री राम का है, हमारा काम केवल उनको सूचना देना है। इसलिए हम अभी लंका नहीं जाएंगे। तो फिर अंगद ने स्वीकार किया कि हाँ ये सही बात है। तो फिर ठीक है, हम लोग सुग्रीव के पास चलते हैं और सुग्रीव को ये समाचार देते हैं। तो सारे बड़े उत्साह में थे, बड़ी प्रसन्नता में थे, भाव विभोर थे, नाचते हुए चल रहे थे। और ऐसे में एक स्थान पर आए जिसका नाम है मधुवन। ये मधुवन ये सुग्रीव का बड़ा ही प्रिय स्थान था। एक बगीचा था बहुत विशाल बड़ा, जिसकी रक्षा के लिए सुग्रीव ने कई बड़े बड़े अपने सैनिकों को रखा था वहां पर। और उस मधुवन में बहुत स्वादिष्ट फल थे, मधु था, जिसको वानर खाना चाहते थे, पीना चाहते थे। तो जब वो मधुवन के निकट आए तो सारे वानर जानते थे कि ये सुग्रीव का है, हम अंदर जा नहीं सकते हैं, राजा की संपत्ति है। लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा उत्साह था, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी बड़ी इच्छा हो रही है, अब इतने दिन हो गए और इतनी खुशी की बात है, तो थोड़ा सा अंदर जाके फल वगैरह खा लें, थोड़ा शहद पी लें, मधु पी लें, मधुपान करें इस मधुवन में। हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे। हनुमान जी ने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है सब लोग अंदर चलो। अंगद ने भी कहा कोई बात नहीं। अंगद ने चर्चा की जांबवंत से और कहा कि ठीक है सब जाएंगे। तो सारे के सारे वानर अंदर चले गए। और फिर अब वानरों का स्वभाव तो जानते हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वानरों को कहा जाएगा चलो लाइन में बैठो, महाप्रसाद गोविंद जितना बांटा जाए, सेकेंड सर्विस नहीं लेना। हाँ, ऐसा तो होगा नहीं वानरों के साथ। तो वानरों ने चारों तरफ वो तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। बड़े उत्साह में थे, खुश थे, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य हुआ था। ये वानर जानते थे कि हमारे दल ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, श्री राम को हम प्रसन्न करेंगे। उन सबकी केवल एक इच्छा थी, कोई उपहार नहीं पाना चाहते थे, कोई ये नहीं सोच रहा था कि जाएंगे तो हमें सुग्रीव बहुत सारा धन देगा, बहुत सारे गहने देगा, आभूषण देगा, नहीं। उन सबकी एक इच्छा थी कि श्री राम के मुख पर उस मुस्कान को देखना चाहते, वो मुस्कुराहट, वो आनंद जब उन्हें ये सुनाई देगा कि सीता अभी जीवित है और सीता को हमने ढूंढ लिया है। बस उस आनंद की प्राप्ति के लिए सारे। तो फिर बड़े उत्साह से सारा तहस नहस करने लगे। और वहां पर दधिमुख जो वहां का रक्षक था, प्रमुख रक्षक, उसके कुछ सैनिक आए और उसने देखा क्या करे, उन्होंने मना करने के प्रयास किया, लेकिन बंदर तो अपने ही जगत में थे, किसी ने सुना नहीं। तो उन्होंने जाकर अपना जो प्रमुख सेवक था वहां का प्रमुख रक्षक दधिमुख, उसको कहा कि अरे ये तो सारा खत्म कर रहे हैं वानर। तो तुरंत अपने सारे सैनिकों के साथ वहां पर आया और उसने प्रयास किया। अब वो किसको रोकने का प्रयास कर रहा था? अंगद को, नील को, हनुमान जी को, जांबवंत को। और वो भी ऐसी अवस्था में जब वो लोग पूर्ण रूप से दूसरे जगत में थे, भावा विभोर थे। दरअसल जब भक्त भावा विभोर होते हैं तो अपनी बाहरी चेतना को भूल जाते हैं। ये भक्त ऊंचे भक्तों के लक्षण है। जो भक्त बहुत आगे भक्ति में है उनके लक्षण है, भूल जाते हैं अपनी बाहरी चेतना को, वो कहां है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो उस समय एक उनको भक्त मिले जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनका नाम था रामदास विप्र। ये रामदास विप्र ये दक्षिण भारत में रहते थे, मदुरई शहर में चैतन्य महाप्रभु की इनसे भेंट हुई और फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने घर पर प्रसाद के लिए बुलाया। सन्यासी हैं, पहले ये नियम था कि जब भी सन्यासी, भले उसको जानते हैं या नहीं जानते, ये जानते थे सन्यासी है तो उसको अपने घर पे ये बुलाना ये नियम था। वैसे भी गृहस्थों के लिए ये नियम दिए गए हैं, गृहस्थों के लिए तो ये नियम भी है कि जब तक बाहर जाकर चिल्लाना चाहिए, अपना भोजन तैयार करके बाहर जाना चाहिए प्रसाद रख के, कि कोई भूखा है और जो भी अगर व्यक्ति हो तो उसको खिलाना चाहिए, और अगर खुद भूखे रहना पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी एक नियम ये है कि भक्तों को घर पर बुलाकर उनको प्रसाद देना, इससे सारा वातावरण भक्तिमय होता है। वो जो स्थान है जिसमें वो गृहस्थ रह रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यों के कारण, कुछ ऐसे कार्य होते हैं व्यापार के कार्य या अन्य कार्य, जिससे भौतिकता बढ़ जाती है उस स्थान पर, लेकिन जब भक्त आते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है, तो सारा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए ये नियम है कि सन्यासियों को भक्तों को बुलाना चाहिए घर पर, कीर्तन होना चाहिए और फिर प्रसाद वितरण होना चाहिए। इससे बहुत जल्दी प्रगति करते हैं गृहस्थ अपने आध्यात्मिक जीवन में। सरल मार्ग है लेकिन बड़ा ही शक्तिशाली मार्ग है। तो इसलिए उस समय चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो लोगों में होड़ लगती थी, लोग एक दूसरे को, नहीं मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, ये भाव था सबका। तो इस रामदास विप्र ने बड़ी नम्रता से चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर आइए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो फिर जब समय हो गया दोपहर का, चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया नदी में, और फिर स्नान करके शुद्ध होके फिर चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंचे तो देखा कि ब्राह्मण बैठा है और कोई तैयारी नहीं है, न प्रसाद है, न कोई बना रहा है, तो ब्राह्मण बैठा है। चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा ब्राह्मण से कि अरे रामदास, आपने मुझे बुलाया है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन मैं तो देखता हूं कि यहां पर कुछ तैयारी ही नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है। रामदास विप्र ने कहा, हम लोग जंगल में रहते हैं। दरअसल वो जंगल में नहीं रह रहे थे, वो तो मदुरई शहर में रह रहे थे। उन्होंने कहा, हम लोग जंगल में रहते हैं और जब तक लक्ष्मण बाहर से जाकर कंदमूल नहीं लेकर आएंगे, कुछ सामान नहीं लाएंगे जंगल से, तो जब तब तक सीता देवी नहीं बना सकती, तो वो लेकर आएंगे तब सीता देवी बनाएंगी, तब हम खाएंगे। भी सोचिए आप किसी के घर पे जाएं, उसने बुलाया आपको प्रसाद के लिए, बहुत भूख लग रही है, आप स्नान वनान करके पहुंच गए कि बस प्रसाद दूंगा, और वो कहे लक्ष्मण लेकर आएगा, सीता देवी तब बनाएंगी, तब खाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए, उन्हें कोई क्रोध नहीं आया, एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसके भावों को समझ गए। उस समय रामदास विप्र अपनी बाहरी चेतना को खो बैठा था, वो राम की लीला में प्रवेश कर चुका था, इसीलिए वो ऐसा कह रहा था। फिर कुछ समय बाद जब वो अपनी बाहरी चेतना में आया तो उसको बड़ा दुख हुआ, कह रहे चैतन्य महाप्रभु आ गए और उनको कुछ दिया नहीं, जल्दी 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 उसने बनाया जैसे भी हो सका, और फिर चैतन्य महाप्रभु को दिए, और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश, क्योंकि कृष्ण को भाव ग्राही जनार्दन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को खिलाएंगे नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो भावों को ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस रामदास विप्र के भावों को ग्रहण किया, और फिर उस विप्र ने यह सोचा कि मेरी वजह से चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि करीब 3-3:30 बज गया था जब भोग दिया और प्रसाद दिया भगवान को, तो उस समय वो बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा कि मैं आज उपवास करूंगा, मैं कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैंने अपराध कर दिया अपने बड़ा दुखी हो गया, फिर से भाव में चला गया बड़ा दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हे विप्र क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने दुखी हो? तो कहने लगा कि मुझे दुख इस बात का है कि सीता देवी जो ऐश्वर्य की देवी है, श्री राम की संपत्ति है, उसको रावण ने स्पर्श किया और इस कारण से मैं बहुत दुखी हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि देखो जिस समय रावण आया था सीता देवी उसी समय गायब हो गई थी, सीता देवी नहीं गई थी, वो तो मायावी सीता थी। असली सीता को अग्निदेव ने दुर्गा जी के साथ में रख दिया था, दुर्गा के स्थान पर ले गए थे और दुर्गा के धाम में वो रही थी। बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई सीता की, तो फिर ये मायावी सीता चली गई और अग्नि ने असली सीता को ला कर दिया। तो असली सीता को स्पर्श नहीं किया रावण ने, तो चिंता मत करो। तो ये सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ ये बात सही है। फिर जब आगे चैतन्य महाप्रभु रामेश्वर की ओर गए, तो वहां पर जब वो बैठे थे तो कुछ ब्राह्मण कूर्म पुराण से पढ़ रहे थे, कूर्म पुराण को पढ़ रहे थे और उसमें यही प्रसंग था। कूर्म पुराण में ये वर्णन था कि उस समय किया गया कि जब सीता देवी ने देखा वहां पर कोई नहीं था, रावण अकेले थे, रावण आए उनको और सीता देवी अकेली थी, तो उस समय अग्नि सीता देवी को ले गए और एक मायावी सीता वहां रख दी और उस मायावी सीता को रावण हरण करके लेकर गया। तो ये वर्णन कूर्म पुराण में है, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसकी प्रतियां ले ली। प्रतियां ले ली अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने जो पत्तों पर उस समय लिखा हुआ था कूर्म पुराण, उसको फिर किसी और से और पत्तों पर लिखवाया, क्योंकि उस समय जेरोक्स वगैरह नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ले जाते, चलो 50 पैसा पर जेरोक्स, कितने पेजेस हैं हो गया, अभी हमारे लिए कितनी सुविधा है, उस समय लिखना पड़ा सब। तो फिर उसकी प्रतियां बनाकर वो वापस आते समय फिर से उस ब्राह्मण से मिले रामदास विप्र और उसको उन्होंने प्रतियां दी, बड़ा प्रसन्न हो गए जब उसको प्रतियां मिली, क्योंकि उसमें वो वर्णन था कूर्म पुराण में कि सीता देवी को रावण ने स्पर्श नहीं किया। देखिए क्या भाव था उसका, ऐसे ही भाव राजा कुलशेखर के थे। कुलशेखर आलवारों में से एक है। दरअसल आलवार शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नशे में है, जो भाषा में तमिल भाषा में आलवार मतलब वो नशे में है। तो आलवार इसलिए उनको कहा गया क्योंकि वो सदैव कृष्ण भक्ति के नशे में रहते थे, इसलिए उनको आलवार कहते हैं। तो राजा कुलशेखर इन्होंने भगवान कृष्ण का बड़े विस्तार से वर्णन किया है, विशेष करके मुकुंदमाला स्तोत्र, जिसको श्रील प्रभुपाद की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उसका अनुवाद करें, लेकिन केवल 6 श्लोकों का वो अनुवाद कर पाए, फिर दूसरे अनुवाद में लग गए इसलिए वो पूर्ण नहीं हुआ। बाद में उनके शिष्यों ने इसको पूर्ण किया। तो मुकुंदमाला स्तोत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया और श्रील प्रभुपाद को ये बड़ा प्रिय था, विशेष करके इसका 1 श्लोक कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरासन, प्रभु इसको गाया करते थे एक भजन के रूप में। तो राजा कुलशेखर ये श्री राम के भी बड़े भक्त थे और हर रोज नियम से अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठकर वाल्मीकि रामायण सुना करते थे। एक समय ऐसा प्रसंग आया वाल्मीकि रामायण में कि जब वो सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि शूर्पणखा का नाक कान काट दिए भेज गए और फिर खरदूषण ने अपने सैनिकों को भेजा, कुछ सैनिकों को राम ने मार दिया और फिर 14,000 राक्षस आए। और वहां उस समय वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री राम अकेले खड़े थे। तो इसको सुन रहे थे राजा कुलशेखर और उन्होंने सोचा 14,000 राक्षस और श्री राम अकेले हैं, ये बड़ा अन्याय है। और तुरंत उन्होंने कहा मैं अभी जाऊंगा और अपनी तलवार से सारे राक्षसों को मारूंगा। और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया सेना तैयार की जाए। सारे जो सेनापति लोग वगैरह क्या हुआ है, कहाँ जाना है, हम जरस्थान जाएंगे। अरे जरस्थान में क्या है, जरस्थान में 14,000 राक्षस हैं, श्री राम अकेले हैं, मेरे प्रभु अकेले हैं। हाँ मैं ये जानता हूं कि वो अकेले ही सक्षम है इन सबको मारने के लिए, लेकिन फिर भी एक भक्त के रूप में मेरी ये सेवा है कि मैं उनकी रक्षा के लिए जाऊंगा। चलो सब, सारी सेना तैयार हो गई, सब अपना कवच अवच पहनकर सब रेडी, चल दिए आगे। और सारे जो सेनापति थे वो चल तो रहे थे, लेकिन आपस में बात कर रहे थे, क्या करें, कहां जा रहे हैं, कुछ पता है, बस चले जा रहे हैं। तो कौन समझाया इस राजा को? और उस समय ऐसा था कि जब राजा ने कहा तो होना चाहिए, आजकल की तरह के मिनिस्टर्स नहीं थे कि अगर कुछ ज्यादा कहा तो उनको बाहर कर दो, दूसरे को ले आओ, ये सब सिस्टम नहीं था। चल रहे हैं सब, तो फिर इन दोनों ने वार्ता की, दो तीन सेनापतियों ने, उन्होंने एक अलग से टुकड़ी भेजी, आगे भाग के जाओ और फिर उस दूसरी तरफ से वापस आना। तो यहां से सेना पूरी जा रही है और दूसरी तरफ से दो तीन सैनिक उनके दूर भागते हुए आए घोड़े पर। राजा ने पूछा, कहां से आ रहे? हम अभी अभी जनस्थान से आ रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। अच्छा, वध कर दिया, सब समाप्त हो गया? हाँ, युद्ध समाप्त हो गया, बहुत अच्छा, चलो हम वापस जाएंगे। राजा कुलशेखर ऐसे कई बार करते थे, जब सीता देवी के अपहरण की उनको सूचना मिली तभी भी वो तैयार हो गए थे, अभी समुद्र पार करेंगे हम, अभी लंका जाएंगे, और सारे तैयार हो गए। फिर से कोई सेना चल दी पूरी, और महाराज कुलशेखर प्रायः समुद्र में प्रवेश कर गए। सब लोग सोच रहे क्या कर रहे, अरे हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, ठीक था भाई, ये तो पानी में जा रहे हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं, और बोल रहे कि मैं, और राजा कुलशेखर को कुछ नहीं पता था, नहीं मैं अभी जाऊंगा, अभी रावण का वध करूंगा, सीता को लेकर आऊंगा, जैसे अंगद उत्साह में आ गए थे, अभी जाएंगे और लेकर आएंगे। तो सब लोग हैरान कि क्या करें, और फिर लोगों ने देखा कि उस तरफ से राजा कुलशेखर ने देखा स्वयं भगवान श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण। और राम ने कहा, चिंता मत करो, सब सुरक्षित है, सीता देवी हैं, सुरक्षित है। तो जब देखा तो हाँ ठीक है, चलो वापस, फिर आधे से वापस आए। तो ये भाव है, लेकिन इन भावों को केवल उच्च श्रेणी के भक्त प्रकट करते हैं, इनकी नकल नहीं करनी चाहिए। चैतन्य लीला में ही ऐसा भी एक प्रसंग है जहां पर एक और भक्त थे, वो भी राम के भक्त, रामदास विश्वास। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ रहे थे तो काशी से वो निकले थे जगन्नाथपुरी की ओर, तो रास्ते में उनको ये व्यक्ति मिला, ये कायस्थ था और हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेता रहता था, कोई कार्य करता श्री राम का नाम लेता रहता, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की बड़ी सेवा करता, और छोटी छोटी सेवाएं, साफ सफाई करना, उनको भोजन देना, उनकी प्लेट उठाना, ये सब बहुत छोटे। और रघुनाथ गोस्वामी अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते थे कि क्यों मेरी ये सेवा कर रहे। उसको कहा कि अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कृपया आप ये सेवा मत कीजिए मेरी। लेकिन वो व्यक्ति बड़े नम्रता से सेवा करता रहता। फिर ऐसे करते करते जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी आकर चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए सबसे पहले, और दोनों थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने प्रणाम किया, दंडवत किया, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, गले से लगाया उनको, आलिंगन किया, और पूछने लगे कैसे हो, कहां से आए हो, सब ठीक है? फिर कहा अभी तुरंत जाओ, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करो। लेकिन वो जो रामदास विश्वास था उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु, प्राय ऐसे कि मानो वो है ही नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई आए और चैतन्य महाप्रभु उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा जाओ दर्शन करके आओ, और चैतन्य महाप्रभु अपने कार्य में लग गए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे, उन्होंने बाद में बतलाया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वही कृष्ण जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये बाहरी दिखावा कर रहा है, राम का नाम ले रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन अंदर हृदय में उसकी एक इच्छा है, कि वो भगवान में विलीन होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जाकर श्री राम में विलीन हो जाऊं, इसलिए उसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा नहीं, उसको नकार दे। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी दृष्टि से इसको प्रकट करे, लेकिन जब तक हृदय में भक्ति नहीं है ये केवल एक मिथ्याचारी स्वभाव हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कभी कभी रामायण में प्रवेश कर जाते थे। एक समय विजयादशमी के दिन पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों के साथ वो थे, तो अचानक वो हनुमान जी के भाव में चले गए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने कहा, विजयादशमी का दिवस था, कि रावण ने सीता का हरण किया है, हमें अभी जाना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, चलो अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ और हम लोग आक्रमण करेंगे अभी इसी समय लंका पर। तो वहां जितने पार्षद थे उनको जो जो लकड़ी वकड़ी कुछ भी मिला, जो सामने पड़ा था, हरेक ने एक एक लकड़ी एक एक छड़ी उठा ली और सब चल दिए साथ में, और उन्होंने आक्रमण किया लंका के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु भी भाव विभोर हो जाया करते थे, लेकिन ये भाव बड़े ऊंचे स्तर पर। तो यहां पर सारे जो वानर थे बड़े भाव विभोर थे, प्रसन्नता थी उनको कि सेवा पूर्ण हुई है। और फिर ऐसे में जब वो विध्वंस हो रहा था, वो उनकी सुन नहीं रहे थे, तो दधिमुख सुग्रीव के पास पहुंचे, और ऐसा हुआ कि जब दधिमुख ने आकर रोकने का प्रयास किया कि रुक जाओ, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा ये मेरी ये जिम्मेदारी है, तो तुरंत आए अंगद से कहा, बाकी लोगों से कहा कि ये नहीं कर सकते। तो अंगद ने उसको देखा और अंगद भी भाव विभोर थे अपनी भाव, पता नहीं क्या हुआ, अंगद ने पकड़ा और जोर से भूमि पर पटक दिया, सारी हड्डियां टूट गई वहां पर, और फिर उसको और मारने लगे। तो ये देखकर सारे जो पहले दूसरे बंदर थे वो तो भाग गए, और फिर दधिमुख भी किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागे। फिर सारे के सारे सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव ने देखा ऐसी अवस्था में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहां पर बड़े आराम से थे, अचानक हनुमान जी अंगद इत्यादि अपने दल के साथ आए हैं और वहां पर पूरा विध्वंस मचा दिया, बहुत शोर कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और सारा आपका मधुवन नाश कर दिया। तो ये जब सुग्रीव ने सुना कि मधुवन, क्योंकि बहुत प्रिय था मधुवन उसको और बड़ा संभाल कर रखता था, इसलिए कई सैनिक अपने सेनापतियों को वहां भेजा था कि कोई इसको हाथ नहीं लगाए। और जब उसको पता चला कि मधुवन का नाश कर दिया, मधुवन को विध्वंस कर दिया इन्होंने, तो बड़ी प्रसन्नता हुई उसके हृदय में, बहुत खुश हो गया सुग्रीव, और उसने कहा हनुमान ने सीता देवी को ढूंढ लिया है। और इसमें लक्ष्मण जी भी बैठे थे, तो लक्ष्मण ने पूछा आकर कि भाई क्या हुआ, ये सब लोग आए हैं आपके पास क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया लक्ष्मण को कि हनुमान जी ये बता रहे हैं मुझे कि हनुमान अंगद इत्यादि मधुवन में बड़ा विध्वंस मचा रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनकर मैं ये जान गया हूं कि हनुमान जी ने सीता को ढूंढ लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंगद ने, नील ने, जामवंत ने, पूरे दल ने ढूंढा, उन्होंने कहा हनुमान जी ने सीता को ढूंढ लिया है, और केवल हनुमान ही ये कर सकते हैं। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम भी ये जानते थे पहले से, इसीलिए जो अंगूठी थी वो केवल हनुमान को दी थी, सबको नहीं दी थी। तो श्री राम भी जानते थे कि यही ढूंढ कर लाएंगे, सुग्रीव भी जानते थे। सुग्रीव ने कहा कि केवल हनुमान ऐसा कर सकते। देखिए एक तरफ कल हम चर्चा कर रहे थे कि हनुमान अपने को श्रेय नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि श्रेय दूसरों को मिले, मैं नहीं लूंगा, लेकिन यहां उनके आने से पहले ही श्रेय उनको मिल गया। क्योंकि भक्त चाहे जितना भी अपनी भक्ति को, अपने भावों को छुपाने का प्रयास करें, या अपना कृष्ण से संबंध को छुपाने का प्रयास करें, कृष्ण चाहते हैं कि वो प्रकट हो जाए उसका गुणगान। जैसे माधवेंद्रपुरी, जिस समय भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, खीर का कटोरा चुरा कर रख लिया भगवान ने अपने पास, रात्रि के समय पुजारी को उठाया, जाओ मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको ये खीर का कटोरा देकर आओ, मैंने चुरा कर रखा है उसके लिए। पुजारी ने सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि भगवान चोरी करेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। देखिए ये भगवान का वैशिष्ट, ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान ने चोरी की वो एक लीला हो गई, आज इतने सालों बाद भी हम लोग उसको श्रवण करके आनंद लेते हैं। माखन चुराया लीला हो गई, पर्वत के ऊपर से कूदे लीला हो गई, युद्ध को छोड़कर भागे लीला हो गई। तो जो भी कार्य भगवान करते हैं वो दिव्य है। तो भगवान ने एक कटोरा चुरा लिया पुजारी को बिना बताए, लेकिन प्रसिद्ध हो गए खीर चोरा को। आज वो खीर खाने के लिए सब लोग वहां पर जाते हैं, भगवान ने जिसके लिए चुराए खीर। तो माधवेंद्रपुरी, उन्होंने जब ये सुना कि भगवान ने मेरे लिए कटोरा चुराया है, तो वो सोचने लगे कि मुझे अब जाना नहीं चाहिए कहीं पर, क्योंकि अब मैं जाऊंगा यहाँ पर रहूंगा, अगर मार्केट में अभी तो कोई नहीं है, जैसे ही सुबह होगी सब बात फैलेगी तो सब आकर मुझे प्रणाम करेंगे, श्रेय मुझे मिलेगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, रात को ही चले गए वहां से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब प्रसिद्धि, कोई श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन गोपीनाथ जी चाहते थे कि श्रेय उनको मिले, तो जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही सारी खबर फैल गई, माधवेंद्रपुरी भगवान के महान भक्त हैं, भगवान ने चोरी की उनके लिए, सारी खबर फैला दी। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्त का गुणगान हो और भक्त चाहते हैं कि भगवान का गुणगान। श्रील प्रभुपाद ने जब प्रचार बार प्रारंभ किया तो एक ही चीज की, कृष्ण का गुणगान। वो सबको कहते थे ये मेरी कोई शक्ति नहीं, ये कृष्ण की शक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, वो गुणगान दूसरों का। लेकिन भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, केवल 10-12 वर्षों में सारे जगत में प्रसिद्ध करा दिया। ये भगवान का आदान प्रदान है। भक्त चाहते कि मेरा गुणगान नहीं, केवल भगवान का। भगवान चाहते ठीक है मेरा तो हो गया, तुमने कर दिया अपना काम, अब मैं अपना काम करता हूं, फिर भगवान उसका गुणगान कराते। इसलिए यहां पर भी हनुमान जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा गुणगान हो, इसलिए सबके साथ में आ रहे थे, लेकिन सुग्रीव के मुख से श्री राम ने उनका गुणगान करवाया। सुग्रीव ने कहा कि ये कार्य केवल हनुमान कर सकते हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने आदेश दिया दधिमुख को सुग्रीव ने कि तुरंत जाओ वापस और बड़ी नम्रता से अंगद इत्यादि से ये कहना कि सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं तुरंत, और आप तुरंत वापस आइए। तो फिर दधिमुख के आदेश को लेकर वापस गए और फिर वो वहां उस मधुबन में पहुंचे और बड़े ही नम्रता से हाथ जोड़कर अंगद से उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे अंगद, मैं योग्य नहीं हूं आपके समक्ष खड़े होने के लिए भी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे स्वामी का आदेश है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं कि बात इसको, आप लोग अब फल खा चुके हैं, अब आप मधु का भी पान कर चुके हैं, अब आप तुरंत सुग्रीव के पास जाइए क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो अंगद ने सब फिर वानरों को इकट्ठा किया और तुरंत फिर वो सुग्रीव की ओर जाने लगे, सुग्रीव से भेंट करने के लिए जाने लगे। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जहां अब बताने वाले हैं, अभी तक ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है, किसी तक खोज लिया होगा, ढूंढ लिया होगा, लेकिन अभी तक सुना नहीं है, श्री राम ने सुना नहीं, सुग्रीव ने सुना नहीं। तो फिर अचानक सुग्रीव ने हवा में बड़ा शोर सुना, क्योंकि ये लोग हवा मार्ग से आए थे, वायु मार्ग से, आस पास बड़ा शोर सुनने लगे, बड़ा कोलाहल हुआ, और सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण से कहा अब मैं बड़ा निश्चित हो गया हूं कि सीता को ढूंढ लिया, देखिए इनके इनके हर्ष को देखिए। और फिर सब लोग सामने आए, अंगद ने आकर प्रणाम किया, हनुमान जी ने, सारे वानरों ने प्रणाम किया और फिर अंगद से कहने के लिए कहा, कहो अंगद। अंगद इतने उत्साही थे कि अंगद ने कहा आप लोग अपने हृदयों को संभाल लीजिए, क्योंकि मैं जो अब बोलने जा रहा हूं वो आपके हृदय को अति प्रसन्नता देगा, और फिर अंगद ने कहा कि हमने सीता को ढूंढ लिया है। और उस समय सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम थे, लक्ष्मण थे। अभी श्री राम ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, विस्तार से बताओ, सीता कहाँ है, कैसी है, क्या हुआ। तो फिर सारे वानरों ने हनुमान जी को आगे किया, अब आप बताइए, डिटेल्स आपके पास है। तो फिर हनुमान जी आए और हनुमान जी ने बड़ी ही नम्रता से श्री राम को सब बताना प्रारंभ किया कि कैसे वे लोग गए और फिर कैसे उन्होंने छलांग लगाई और फिर रावण की नगरी में पहुंचे और उन्होंने वहां सीता को देखा। तो जब श्री राम ने सुना कि सीता देवी को हनुमान जी ने देखा है, पूछने लगे वो कैसी है। तो हनुमान जी कहने लगे कि उन्होंने अपना ये आभूषण मुझे आपको देने के लिए कहा था, ये आभूषण लिया है। और जैसे ही श्री राम ने उस आभूषण को देखा तो उनको सीता देवी का स्मरण हो आया और वो कहने लगे कि ये आभूषण ये जनक ने दिया था अपनी पुत्री को उस समय, सीता को, और ये विशेष आभूषण है क्योंकि ये इंद्र ने जनक को दिया था। लेकिन इस समय इस आभूषण को देखकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है और दुख इसलिए कि मैं केवल इस आभूषण को देख रहा हूं, इस आभूषण को धारण करने वाली सीता को इसके साथ नहीं देख रहा। तब फिर वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि श्री राम रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो पूछने लगे हनुमान से कि हनुमान और बताओ, सीता कैसी है, वहां क्या हुआ, विस्तार से बताओ, और कोई संदेश भेजा सीता ने। तो फिर उस समय हनुमान जी ने बड़े विस्तार से बताया कि सीता देवी ने एक संदेश ये भेजा है कि रावण ने बहुत कम समय दिया है, केवल एक महीना वो रह सकती हैं, उसके बाद वो अपने प्राण नहीं बना रखे पाएंगे, इसलिए आपको तुरंत अभी उनके पास जाने की तैयारी करनी है। श्री राम ने जब ये सुना तो श्री राम बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि शायद सीता ये तो एक महीने तक अपने प्राण बनाए रख सकती है, लेकिन मेरे लिए एक क्षण भी अब उसके कष्टों को सुनने के बाद अपने प्राण बनाए रखना संभव नहीं है। तब तुम केवल एक काम करो, मुझे उसका संदेश दो, क्योंकि ये संदेश मेरे लिए मेरे प्राण होंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक गाय वो अपने बछड़े को देखती है और बछड़े को देखते ही उसके थनों से दूध बहने लगता है, उसी प्रकार मैं केवल इस संदेश को सुनकर अपने प्राणों को बनाए रखूंगा। मेरा हृदय अभी पिघल रहा है, मेरा हृदय में बहुत सा शोक हो रहा है, कृपया जल्दी बताओ सीता का क्या संदेश है। तो फिर उस समय हनुमान जी ने ये बतलाया कि सीता देवी ने एक कथा सुनाई है, मुझे मुझसे ये कहा था कि जब श्री राम ये पूछे कि क्या संदेश है तो इस कथा को सुनाना, इससे वो जान जाएंगे कि तुमने सीता को ही देखा है, तुम सीता से ही मिले हो। और वो कहने लगे कि चित्रकूट में जब हम लोग रह रहे थे तो एक समय मैं और आप अकेले थे और ऐसे समय में जब आपको थोड़ी सी नींद आ गई तो एक कौवा ये बार बार आकर तंग कर रहा था, मेरे शरीर पर अपनी चोंच मार रहा था, मैं प्रयास कर रही थी उसको हटाने का लेकिन वो बार बार आ गया था और फिर अपनी चोंच मार मार के उसने मेरे शरीर को घायल कर दिया, खून आने लगा उससे। और जब आप उठे, आपने उठकर देखा तो आपने मुझसे कारण पूछा कि खून कैसा, ये रक्त कैसे आया। और फिर ऐसे में मैंने जब आपको बतलाया तो आपको बड़ा क्रोध आया और आपने एक घास का तिनका लिया और उसमें मंत्र डाला, वो ब्रह्मास्त्र में बदल गया और फिर वो आपने उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। कौवा भागने लगा, सारे लोगों में यहां वहां सबके पास गया, कोई मदद नहीं कर पाया और अंत में आपके चरणों में आया, आश्रय लिया उसने। और क्योंकि आपका वचन है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसको मैं अभय प्रदान करूंगा, इसीलिए आपने उसको माफ किया, क्षमा किया। लेकिन क्योंकि अस्त्र चल चुका था तो इसलिए आपने उसकी सीधी आंख पर उस अस्त्र को मारा, उसकी एक आंख ले लिया आपने। ऐसे बताते हैं कि उस समय के बाद से आज तक कौओं की एक ही आंख होती है, एक आंख से देख सकते हैं। से आप लोग रिसर्च करना चाहें तो करिए, हमें रामायण पर विश्वास है। तो फिर एक आंख आपने उसकी ले ली और उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। तो जब ये प्रसंग सुना, श्री राम उस स्थिति को याद करने लगे और फिर से कहा, हनुमान एक बार फिर से कहो। हनुमान ने फिर से पुनः उस प्रसंग को कहा और उस समय श्री राम को बहुत दुख हुआ। एक स्थान पर यह भी वर्णन है कि और एक संदेश इसके साथ सीता देवी का हनुमान जी ने दिया। सीता देवी ने कहा था हनुमान से, ये वर्णन वहां पर आता है, कि आप जाना और राम और लक्ष्मण के चरणों को पकड़ना और उनसे ये कहना कि हे राम, मैं मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, अपनी वाचा से, अपने कर्मों से पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हूं, आपको समर्पित हूं। फिर ऐसी सीता को आपने क्यों त्याग दिया इतने समय तक? मेरी क्या गलती थी जो आपने अभी तक मुझे अपने आप से अलग रखा है? और फिर सीता कहती है कि हां, एक गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करती हूं। और वो क्या गलती थी? कि जब मैं आपसे अलग हुई, मैं आपसे विलग हुई और उसके बाद भी मैंने अपने प्राणों को बनाए रखा, ये मेरी गलती थी। देखिए, ये भक्त का भाव है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी भाव को प्रकट किया था। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्रेम होता तो कृष्ण की विरह में मैं अभी तक अपने प्राण छोड़ चुका होता। लेकिन मेरे प्राण बने हुए हैं, मैं शरीर में हूं, इसका अर्थ यह है कि मुझे कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो सीता देवी ने भी यही कहा कि मेरी एक गलती हो गई स्वामी, कि आपसे अलग होकर भी जीवित रहे। लेकिन इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, इसके लिए मेरी आंखें दोषी हैं। सीता देवी कहते हैं, इसके लिए मेरी आंखें दोषी हैं। क्यों आंखें दोषी हैं? वो कहने लगी कि आपकी विरह ये एक अग्नि के समान है और जब आपकी विरह में मैं सिसकियां लेती हूं, मैं आहें भरती हूं, तो वो हवा के समान है जो इस अग्नि को और बढ़ाती है। और इन दोनों के बीच में मेरा शरीर ये एक रुई के समान है। एक तरफ अग्नि है, दूसरी तरफ हवा है जो अग्नि को बढ़ा रही है, और बीच में एक रुई कॉटन। इसको तो जल जाना चाहिए था, समाप्त तो हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आंखें ये उस रुई को गीला कर देती हैं, क्योंकि सतत इनसे अश्रुओं की धारा बह रही है, रुकती नहीं है। जब से आपसे विरह हुई है, जब से आपसे अलग हुई हूं, ये आंखों ने रोना बंद नहीं किया। तो उन धाराओं के कारण, उन आंसुओं के कारण ये मेरा शरीर, ये रुई गीली हो जाती है, इसलिए जल नहीं पा रही है, इसलिए समाप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए हे स्वामी, ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती मेरी आंखों की है। और आंखें क्या चाहती हैं? आंखें चाहती हैं कि एक दिन उनको आपके सुंदर रूप का दर्शन हो। केवल इसी आशा में वो बनी हुई है। ये भक्त का भाव है कि अगर हमारी आंखें हैं तो कृष्ण के लिए। श्रीमती राधा रानी जब इस जगत में प्रकट हुई उन्होंने भक्ति के सिद्धांत को प्रकट किया। श्रीमती राधा रानी ने आंखें नहीं खोली। वृषभानु महाराज सोच रहे थे अंधी है ये, मेरी इतनी सुंदर पुत्री लेकिन आंखें नहीं खोलती है, शायद अंधी है, बोलती नहीं है। अब जब नारद मुनि ने देखा और नारद मुनि पहचान गए श्रीमती राधा रानी को, और फिर उत्सव हुआ, नंद महाराज आए, यशोदा मैया आई और उनकी गोदी में कृष्ण भी आए। और फिर जब कृष्ण धीरे से चलते हुए उस पालने के पास पहुंचे जहां पर राधा रानी आंखें बंद किए हुए थी, लेटी हुई थी, और जैसे ही कृष्ण आए राधा रानी ने अपनी आंखें खोली पहली बार। तो ये आंखों की पूर्णता है। आंखों से नेत्रे विवंती नयनाभिरामम, नेत्रों से पीना चाहिए भगवान के सुंदर रूप को। तो सीता देवी कहने लगी मेरी गलती नहीं है ये। एक भक्त को सीता देवी के इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि अगर हम कृष्ण से अलग हैं तो हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं। सीता देवी ने कहा यह हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम कृष्ण से अलग होकर जी रहे हैं। अगर एक साधक के, एक भक्त के जीवन में कृष्ण नहीं है तो ऐसे जीवन का क्या लाभ है, और अगर मृत्यु के समय कृष्ण नहीं है तो ऐसी मृत्यु का क्या लाभ है। भक्तों की मृत्यु और अभक्तों की मृत्यु में एक ही अंतर होता है। अभक्त मृत्यु से भागते हैं और भक्त मृत्यु को अंगीकार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे लिए एक ऊंचे स्थान पर जाने का मार्ग है, अब मैं कृष्ण से मिलूंगा। ये हमारा जीवन ये एक यात्रा है, हम चलते रहते हैं और ये यात्रा जारी रहती है। एक योनि दूसरी योनि, एक शरीर दूसरा शरीर, ये जीव की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का अंत क्या है? एक आशा कि ऐसे ही चलते हुए अचानक हम कहीं पर मुड़ेंगे और सामने कृष्ण खड़े होंगे और वो कहेंगे कि काफी समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरे धाम गोलोक वृंदावन में आपका स्वागत है, जैसे गोप कुमार को किया। गोप कुमार भटक रहा था, उसकी यात्रा थी, कभी एक लोक में कभी दूसरे लोक में, एक स्थान में दूसरे स्थान में भटकते भटकते कहीं संतुष्ट नहीं था, और अंत में वो लोग पहुंचा जहां कृष्ण ने दोनों हाथ आगे कर कर उसका स्वागत किया। आचार्य समझाते हैं कि जब जीव भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वापस जाते हैं तो भगवान ऐसे ही स्वागत करते हैं, भागते हुए आते हैं, और न केवल भाग रहे हैं, अभी अभी हम पहुंचे हैं गोलोक और कृष्ण भागते हुए आ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और यह भक्त भी आंसू गिरा रहे हैं। ये आंसू प्रेम के हैं, ये आंसू कष्टों के नहीं। इतने समय बाद कृष्ण को देखा है, कृष्ण ने अपने भक्त को देखा है, दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे की ओर, दोनों की आंखों में आंसू है, आलिंगन करते हैं, गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर आलिंगन करते हैं, फिर मूर्छित होते हैं। अब भी कृष्ण उठकर को कहते हैं यशोदा माता ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, चलो मेरे साथ घर पे, बहुत समय से तुमने ठीक से खाया नहीं होगा। और फिर कृष्ण ले जाते हैं और फिर यशोदा माता अपने हाथों से उसको बनाकर खिलाती है। ये जीव के लिए उसके सारे संघर्षों का फल है, उसके जीवन की पूर्णता है, उसके संघर्षों का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और अगर इस लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, इसको छोड़कर हम और अन्य भोगों में पड़ते हैं, इस जगत में बने रहने के लिए सुविधाएं बनाते हैं, तो फिर कृष्ण हमसे दूर चले जाते हैं और फिर उस आनंद को हम त्याग देते हैं, उस आनंद को भूल जाते हैं। वो भक्ति का आनंद, वो दिव्य आनंद जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इनके सानिध्य से प्राप्त होता है, इनकी भक्ति से प्राप्त होता है। और फिर ऐसे गोलोक धाम में बड़े आराम से कृष्ण के सखा के रूप में, कृष्ण के माता पिता के रूप में, कृष्ण के प्रेमी के रूप में, कृष्ण के दासों के रूप में नित्य कृष्ण का दर्शन करते हैं। और ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। और ऐसे स्वरूप की प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इसमें हमें सहायता करते हैं भगवान के नामों का उच्चारण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम ने कहा कि मैं इस सारी सृष्टि में केवल तीन लोगों के विषय में ये सोच सकता हूं जिन्होंने ये कार्य किया, समुद्र पार करना। एक गरुड़, दूसरे स्वयं वायुदेव और तीसरे हनुमान। तुमने कहा कि हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है ये कार्य। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन देखो मेरी कैसी अवस्था है। मैं इतना पतित हूं, इतना बुरा व्यक्ति हूं कि सीता देवी वहां कष्ट सह रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा। और आप जो मेरे पास इतना कुछ लेकर आए हो, इतनी अच्छी समाचार लाए हो, लेकिन मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या दूं मैं तुम्हें। हनुमान भगवान के चरणों में पड़ गए, रोने लगे हनुमान जी, आंखों से आंसू आए। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, बस। मैं मुक्त भी नहीं होना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं आपके धाम में, यही आपकी सेवा चाहिए बस, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। और भगवान ने उस समय हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मेरा अपना इस समय कुछ नहीं है, मैं बहुत ऋणी हूं तुम्हारा, लेकिन ऋण उतार नहीं सकता। तुमने जो कार्य किया है, केवल उसके बदले में मैं तुम्हें आलिंगन कर सकता हूं। और फिर श्री राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें बहुत प्रेम से आलिंगन किया। आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है जहां श्री राम हनुमान जी को आलिंगन कर रहे हैं। और फिर उस समय हनुमान की प्रसन्नता, इसकी हम सीमा को बदला नहीं सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत में आनंद की एक सीमा होती है। भौतिक जगत का आनंद, इसके कुछ लक्षण है, ये सीमित होता है, ये बासी हो जाता है। कितना आनंद होता है, कुछ खाने में आनंद, जैसे ही पेट भरे उसके बाद वही चीज आनंद नहीं देती। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, कितने खाएंगे, 10, 12, 15, 20, उसके बाद अगर गुलाब जामुन सामने भी आएगा तो वो देखना भी नहीं चाहेंगे, तो फिर कैसा आनंद। सीमित है आनंद, अन्य कोई भी आनंद इस जगत का सीमित है, लेकिन भक्ति का आनंद असीमित है। आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वादन कराता है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, सारे वहां पर भक्त जय जयकार करने लगे, सारे वानरों को आनंद हुआ। और फिर ऐसे में श्री राम और लक्ष्मण एक स्थान पर जाकर बैठे और फिर उन्होंने चर्चा प्रारंभ की कि कैसे लंका जाना चाहिए, कैसे लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए, कैसे रावण का वध करना चाहिए, सीता को लाना चाहिए। तो ये सारी कथाएं अगले वर्ष रामनवमी के अवसर पर हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी?
स्वरूप सिद्धि वो क्या है? यहाँ पर जीव अलग अलग योग